सॉरी, हमारी आंख नहीं खुली, इसीलिए आने में जरा देर हो गई। रूपाली जी से तो उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, पर यहाँ फलक को उसने अपनी देर से आने की सफाई जरूर दे दी थी। जवाब में फलक ने शरारत से आंखें मटकाते हुए कहा, आंख नहीं खुली इसीलिए आने में देर हो गई, या भैया आपको छोड़ नहीं रहे थे इसीलिए पहले नहीं आ सकी? फलक की बात सुनकर आहना सकपका गई। इतने में फलक की नज़र उसकी हल्की गुलाबी आंखों पर चली गई। वैसे भाभी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों लग रही हैं? भैया ने सारी रात सोने नहीं दिया क्या? फलक ने एक बार फिर चंचल निगाहों से उसे छेड़ा और शरारती मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए धीरे से आंख दबा दी। उसकी बात सुनकर आहना एकदम से हड़बड़ा गई। उसको घबराहट में निगाहें घुमाते देखकर फलक हंस पड़ी। बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। एक अच्छी ननद का फर्ज निभाते हुए फलक सारे वक्त उसे छेड़ती रही और बेचारी आहना शर्म से नजरें झुकाए अपने कामों में लग गई। नाश्ते के लिए जब आहना अक्षय को उठाने गई तो उसे गहरी नींद में देखकर डिस्टर्ब नहीं किया। सबने खामोशी से नाश्ता किया। अक्षय महाराज सीधे दोपहर में उठे। लंच पर जब उसने एम्स ज्वाइन करने की बात बताई तो सभी पहले चौंक गई, फिर खुश हो गए। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की क्या अहमियत है ये तो सभी जानते हैं। जब ये बात रिश्तेदारों तक पहुंची तो सबकी मुबारकबाद के साथ बहू के कदमों की तारीफ भी होने लगी कि लक्ष्मी बनकर उसने घर में कदम रखा, और उसके शुभ कदमों के घर में पड़ने के साथ ही इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई। शाम का वक्त था। फलक रूपाली जी संग ड्राइंग रूम में बैठी थी। कैलाश जी और अन्वय घर पर नहीं थे और अक्षय भी वहीं बैठा अपने फ़ोन में कुछ करते हुए बार बार रसोई की ओर देख रहा था, जहां आहना शाम की चाय बनाने गई थी। दोपहर से ही रूपाली जी सब दोस्त रिश्तेदारों को फ़ोन कर करके सबको अक्षय के एम्स ज्वाइन करने की खबर दे रही थीं। अब की फ़ोन उन्होंने अपनी बहन को मिलाया। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें हुईं, फिर जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया कि रूपाली जी के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए। अरे, अभी कहाँ कोई खुशखबरी है हमारे घर। हमारी बहू पढ़ी लिखी और कामकाजी है, यहाँ रहती ही कितने दिन हैं। अब तो उसका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, क्या पता अभी हमें अपने पोता पोती को अपनी गोद में खिलाने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़े। उनके शब्द सुनकर अक्षय और फलक दोनों के कान खड़े हो गए। वे दोनों फटी आंखों से हैरान परेशान से कभी एक दूसरे को तो कभी रूपाली जी को देखने लगे। वहीं रूपाली जी ने अब हैरत से कहा, अच्छा, उसके बच्चा हो गया, बेटा हुआ है, भगवान की कृपा है। हमारे पड़ोस में जो मिसेस श्रीवास्तव रहती हैं, उनकी बहू को आए भी अभी 3 महीने ही हुए हैं और उसने खुशखबरी सुना दी। लक्ष्मी है, घर में कदम रखते ही घर को खुशियों से भर दिया। और एक हमारी बहू है, शादी को साल भर होने को आया है पर कोई सुख बुगाहट ही नहीं। अपना अपना नसीब है, अब हम कहीं भी तो क्या कहें, बस अपनी इच्छा ही जाहिर कर सकते हैं। बाकी तो बच्चों की मर्जी है, पढ़े लिखे हैं, हमारे तुम्हारे जैसे थोड़े हैं, परिवार से ज्यादा अपने काम को अहमियत देते हैं। देखते हैं हमारे नसीब में कब दादी बनने का सुख आता है। इसके बाद आधे घंटे तक वे इसी टॉपिक पर बात करती रहीं, घुमा फिराकर आहना की पढ़ाई और काम पर तंज कसती रहीं। वो कहावत है ना, मखमल में छुपाकर चप्पल मारना, मीठी छुरी से हलाल करना, बस यही पैंथरा रूपाली जी आहना के खिलाफ अपनाती थीं। पहले उन्हें आहना के यहाँ ना रहने से परेशानी थी, और अब जब उसका यहाँ ट्रांसफर हो गया था, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी फरमाइश करने लगीं। अब उन्हें अब तब दादी ना बन पाने का दुख सताने लगा था, और उसके लिए भी जिम्मेदार आहना की पढ़ाई और उसके काम को ठहराया जा रहा था। आहना जो चाय और स्नैक्स लेकर आई थी, वे इन बातों से कुछ असहज सी हो गई। अभी तो वो यहाँ ठीक से एडजस्ट भी नहीं हुई थी, शादी को वक्त ही कितना हुआ था, बच्चे के बारे में तो अभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। और जिस तरह से रूपाली जी बोल रही थी, आहना को बहुत बुरा लगा था। जाने क्यों शादी के बाद ससुराल में हर बात के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। अक्षय जो पहले हैरान था, अब उसके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए थे। उसे कॉफ़ी पकड़ाते हुए आहना की निगाहें उसकी ओर उठीं तो पल भर को उनकी नज़रें टकराईं। फिर आहना निगाहें झुकाते हुए पीछे हट गई, पर वो पल भर का आंखों का मिलना अक्षय को उसके दिल के हाल से वाकिफ कर गया था। घंटे भर बात करने के बाद जब रूपाली जी ने फ़ोन काटा तो आखिरकार अक्षय ने उनसे इस मामले में साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। मम्मी, अभी आप मौसी से बच्चे के बारे में बात कर रही थीं, इस बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो बेटा, कब हमें दादी बनने की खुशखबरी सुना रहे हो? रूपाली जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही खुशदिली से सवाल किया, जिससे साफ जाहिर था कि वे दादी बनने को कुछ ज्यादा ही बेकरार हैं। उनका सवाल सुनकर आहना ने अपनी निगाहें झुका लीं और घबराहट में अपने हाथ की उंगलियों को आपस में उलसाने लगीं। वहीं अक्षय ने गहरी सांस छोड़ी और गंभीरता से बोलना शुरू किया, मम्मी, मैं समझता हूँ कि अपने आसपास सबको दादी बनते देखकर आपके मन में भी अपने पोते पोती को देखने की इच्छा जागती होगी, पर अभी ये मुमकिन नहीं है। आप जानती हैं कि हमारी शादी को अभी ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ है। इन बीते 7-8 महीनों में हम अपने अपने काम के कारण ज्यादातर अलग अलग रहे हैं।
अब जाकर तो आहना का यहाँ ट्रांसफर हुआ है, उन्हें भी इस नई जगह नए माहौल में ढलने में वक्त लगेगा। नई जगह काम करेंगी तो अभी वहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी और मैं भी हॉस्पिटल बदलने वाला हूँ तो मुझे भी अपना ध्यान वहाँ लगाना होगा। ऐसे में अभी बच्चे की जिम्मेदारी के लिए हम दोनों तैयार नहीं है, और अगर आहना हो भी तब भी मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहता क्योंकि बच्चे के आने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा और अभी मैं उनके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी जल्दी हम पर बच्चे का दबाव मत बनाइए और इसके लिए आहना को ब्लेम भी मत कीजिए क्योंकि ये मेरा फैसला है। हम आपकी ये इच्छा सही वक्त आने पर पूरी जरूर करेंगे, पर हम इतनी जल्दी बच्चा प्लान नहीं करेंगे, इसीलिए अभी इन बातों को रहने दीजिए। अक्षय ने बहुत ही शांति से और साफ साफ शब्दों में अपनी बात उनके सामने रख दी थी। जितने काम लिए उसने इस सिचुएशन को डील किया, आहना पर लगे ब्लेम को हटाते हुए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले ली। फलक जहां अपने भाई पर नाश करने से खुद को रोक न सकी, आहना की निगाहें भी अक्षय पर ठहर गईं। वहीं रूपाली जी खिसियाते हुए मुस्कुरा दी। आहना, आप यहाँ क्या खड़ी हैं? जाकर जल्दी तैयार हो जाइए वरना हमें देर हो जाएगी। अक्षय ने अब आहना की ओर नजरें घुमाते हुए जरा नरमी से कहा। उसकी बात सुनकर रूपाली जी ने तुरंत ही सवाल दागा, कहाँ जा रहे हो तुम बहू को लेकर? अक्षय ने नजरें उनकी ओर घुमाई और एक बार फिर गंभीरता से बोला, वो मम्मी मैं आपको बताना भूल गया, आज मेरे हॉस्पिटल के फ्रेंड्स ने साथ में मूवी देखने का प्लान बनाया है जिसमें सब अपने अपने पार्टनर को लेकर आने वाले हैं और मुझे भी आहना के साथ आने को कहा है, तो बस वहीं जाना था अगर आपकी इजाजत हो तो। पूरी बात उन्हें बताने के बाद अक्षय ने इजाजत मांगी, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही फलक झट से बोल पड़ी, अरे भैया इसमें पूछना क्या है? आपकी और भाभी की शादी को इतना वक्त हो गया और आज तक आप उन्हें कहीं बाहर नहीं लेकर गए। मैं तो कहती हूँ मौके पर चौका मारिए और जल्दी से निकलिए, मूवी के साथ बाहर डिनर भी कर लीजिएगा, साथ में कुछ वक्त भी बिता लीजिएगा। वैसे भी भाभी बीवी हैं आपकी, भला मम्मी को क्या एतराज होगा आपके उनके साथ जाने से? ये चला था असली दाव। फलक ने रूपाली जी को अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि वो चाहकर भी इनकार ना कर सकी। चले जाओ पर वक्त पर लौटाना। उन्होंने इजाजत तो दे दी पर मन ही मन कुड़ कर रह गई, लेकिन इससे फर्क किसे पड़ता था। अक्षय इजाजत मिलने पर खुश था और फलक भी तुरंत ही आहना के पास पहुंच गई थी। भाभी आप ये सब छोड़िए, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी, आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाइए और आज की शाम भैया के साथ बिताइए।
उसने आहना के हाथ से ट्रे लेकर आहना को वहां से भेज दिया और अक्षय को देखते हुए अपनी आंख विंक कर दी। अक्षय उसकी ये हरकत देखकर मुस्कुराए बिना ना रह सका। कमिंग सून।